وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اپنے آج کے اس دن کا اس وقت کا بہترین استعمال کریں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے سننے سمجھنے پھر اس پہ غور کرنے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہو آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 اس کے ڈے 25 دن کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا گول سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر پارے کے اینڈ تک ہے سورۃ یاسین ہم پچھلے حصے کے آخر میں شروع کر چکے چند باتیں اس کی لے کر ہم آج کے اس پارے کو دیکھیں گے آج کے اس پورے پارے کے اندر جس چیز پہ بہت بات ہوگی وہ ہے ہدایت کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے جب دل صحت مند اور سلامت ہوتا ہے تو چاہے دور سے کوئی بات سن لے اس کے دل پر اثر کرتی ہے اور جب دل سلامت نہیں ہوتا تو چاہے پاس بیٹھا شخص ہدایت کی دعوت دے انسان اس کی طلب نہیں رکھتا سب سے پہلے اس میں حبیب کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ یاسین اصل میں تعصب کی دیواروں کو توڑنے والی سورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے اس ماحول میں تعصب یہ تھا کہ جب ہمارے باپ دادا کو کوئی بات نہیں پتہ چلی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورت کے بالکل آغاز میں دے دیا کہ جب لوگ اپنے ارد گرد دیواریں ہی کھڑی کر لیں گے تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی پھر دوسری چیز جو ہم نے ابھی تک دیکھی وہ کیا ہے کہ قرآن پاک حکمتوں والی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہوئی تھی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں ایسے وقت میں یہ کتاب ہمیں عقلی ہدایت بھی دیتی ہے اور عملی ہدایت بھی دیتی ہے عقلی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی عملی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا کتاب کو رسول سے یا رسول کو کتاب سے الگ کریں گے تو ہدایت سے دور ہو جائیں گے دلوں کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک چیز کو لینے لگتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑنے لگتے ہیں پھر اسی طرح سے ہم نے اس سورت کے شروع کے حصے میں ایک آیت دیکھی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ آیت نمبر 12 ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ لیکچر سنا ہوگا نہیں سنا تو سننے والی لسٹ میں اس کو ڈال دیا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج میں اور آپ اس دنیا میں جو کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ زمین آپ کے میرے پرنٹ لیتی ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا اس کے لیے انسان کو بہت پہلے سے کوشش کرنی پڑتی ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان اس کے اندر پھر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے कि अच्छे काम के आगाज से ही अच्छा अंजाम शुरू हो जाता है। आप यहाँ कुरान सीखने आए, खामोशी से बैठ के सुन रहे हैं, अमल के इरादे हैं, एक एक सोच आपकी आपके लिए माकद्दमु व आसारहुम की सूरत में महफूज होती जा रही है। ज़रूरत है इस बात की कि हम शऊर पैदा करें। हमारी गाड़ियों के पहिए ही कहीं ना कहीं से घूमे होंगे, अल्लाह ने वहाँ भी निशान लगा दिए कि ये गाड़ी, ये टायर हिदायत की तलब में घूमा था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला चाहेगा तो ये ज़मीन के टुकड़े गवाही देंगे। एक और चीज़ पता चलती है कि ज़मीन मुर्दा है, बाहर मुर्दा लिखती है लेकिन सब कुछ नोट कर रही है। इसकी दलील देखिए कि आज साइंस ने हमें इस चीज़ की गवाही दिलवा दी कि हर चीज़ घूम रही है और ये ज़मीन बहुत तेज़ी से घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन क्या आपको मुझे उसकी हरकत दिखती है? महसूस भी नहीं होती, और अल्लाह ना करे कभी महसूस हो। तो जब हरकत है और हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो हो सकता है कि समात भी हो, ये ज़मीन ये टुकड़े हमारी बातें सुन भी रहे हों और रिकॉर्ड भी हो रहे हों और हमें पता ही नहीं। और साइंसदानों ने अब इस पर रिसर्च शुरू कर दी हुई है कि कायनात में जो कुछ हम आप कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ अब वो बटन ढूंढ रहे हैं कि जिससे इसको रीप्ले कर सके। तो कोई काम करें तो शौक से करें, कहीं भी आप जाएं, कुछ भी करें, उस वक्त आपका वहाँ जाना और वहाँ बैठना किसी भी असर से खाली नहीं होता। अब आगे जो किस्सा है वो एक बस्ती का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से पता चलता है कि इस शख्स का नाम हबीब था। क्या उसकी तड़प थी, क्या तलब थी, असल में आज पूरा पारा इसी के गिर्द घूमेगा। आइए तर्जमा पढ़कर फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। इसको हाईलाइट कर लें। असल बात तो यह है कि जब भी कभी कोई आपको किसी नेकी से महरूम करना चाहे या किसी गुनाह से माला माल करने की ख्वाहिश करे, तो ये आयत आपके मेरे लिए एक हुज्जत है। उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की थी, लेकिन आप और मैं अपनी ज़िंदगी के हर अमल पर जो अल्लाह के हुक्म पर हम करने लगे, इस बात को कानून बना लें कि जिसने पैदा किया और जिसको जाकर मुंह दिखाना है उसकी बात ना मानूँ तो क्या होगा। यकीन कीजिए, नमाज पढ़नी भी आसान हो जाएगी, कुरान पढ़ना भी, हिजाब करना भी, सब कुछ करना। और असल में इस जुमले में इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। क्यों? कि उसने मुझको पैदा किया। रजुलन मोमिन की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस शख्स का अपना दिल जब हिदायत पे जमा हुआ था तो ये बोला। तो यहाँ ये नोट कीजिए, ईमान गूंगा नहीं होता, ईमान चुप नहीं रहता। जब आपके अपने दिल में अल्लाह की मार्फत आ जाती है, वमा लिया लाअबुदु लाअबुदु, ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ कहते हैं जिसका खाओ उसके गुण गाओ, जो आपका मुहसिन है तुम उसके एहसानों का बदला दो। तो यहाँ चंद सेकंड के लिए आप और मैं सोचें, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाया हुआ है कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जब मुझे अल्लाह की कोई कॉल आ जाए, जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो फिर मैं उसके चल पड़ूँ। फिर दूसरी बात देखिए जो उसने कही, और वो क्या है कि उसकी तरफ पलटना है। ये पलटने का एहसास जो है ना, यही असल में इंसान को सीधा रखता है। हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। यहाँ से आपको उसके अकीदे की दूसरी तह खुलती भी दिखती है। और यकीन कीजिए, अगर काम करना है किसी चीज़ पे तो अपने ईमान पे कीजिए। ईमान दिखता नहीं है लेकिन उसका असर दिखता है। मसलन आप देखिए कि आपको गाड़ी दिखती है लेकिन गाड़ी की टंकी में जो पेट्रोल या गैस डाली है वो नहीं दिखती, लेकिन पेट्रोल है तो गाड़ी चल रही है, गैस है तो गाड़ी चल रही है। अच्छा पेट्रोल है, गाड़ी अच्छी चल रही है, अगर ज़रा सा कचरे वाला आ गया तो वो झटके देगी। असल चीज़ जो मेरे आपसे नेकियां करवाएगी वो ईमान है। हम अपने डे वन से, यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर से ये बात करते आ रहे हैं कि ईमान नेकियां करवाने वाला एक मोटिव है। आप किसी भी जगह अपने अमल में कोई कमी देखें या अपने इर्द गिर्द वालों में, जाकर ईमान को चेक करें। बस आप देखिए, बाद जब आपको सर में दर्द होता है, आप सर दबाते हैं फिर भी नहीं ठीक होता, क्योंकि वजह सर नहीं था, स्टमक था, स्टमक अपसेट है, पेट में गैस हो गई, कुछ भी हुआ, तो वो सोर्स ढूंढना चाहिए जो बीमारी पैदा करता है। ईमान खालिस है जुरत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सबसे बड़ी बात कि खैर ख्वाही भी आएगी। अल्लाह ताला इसकी इस बात से हमें ये बात दिखा रहा है, और वो क्या है, फरमाया अगर मैं तुम्हारी इस बात पे काम करूं, हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तो सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। असल देखिए ये बात है, जब खुद बंदा ईमान पर आता है ना तो उसको दूसरों की फिक्र लग जाती है। हिदायत अंदर गई, हिदायत जुबान पे आ गई, अपनी हिदायत मुकम्मल हुई, दूसरों की हिदायत की फिक्र लग गई। खैर ख्वाही का सिंबल है ईमान के पौधे से जो चीज़ फूटती है वो खैर ख्वाही है। सबसे पहले आप अपने खैर ख्वाते हैं, क्यों मैं इस जिस्म को आग में जलवाऊं, क्यों थोड़े से फन और प्लेयर के लिए मैं अब आखिरत में अपने आप को परेशान करूं। इसके बाद करीब वालों की, उसके बाद उसके बाद, और एक वक्त आता है कि फिर आप इस्लाह की कोशिशों में लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबीब ने जीते जी भी लोगों की खैर ख्वाही की और मरने के बाद भी, कैसे कि उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके दिल में उनके लिए क्या तमन्नाएं थी। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। आखिरकार इन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और इस शख्स से कह दिया क्या कि दाखिल हो जा जन्नत में। इधर जिस्म से खून का कतरा जमीन पे गिरा, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। शहीद के साथ ऐसा ही होता है। हदीस में आता है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में जान देता है तो उसको फौरन जन्नत दिखाई जाती है, और शहीद के लिए कब्र का अजाब भी नहीं है, वो अपना बरज़ख का वक्त जो है वो जन्नत में गुजार देता है। उन्होंने दुनिया की राहें बंद की, अल्लाह ने जन्नत के रास्ते खोल दिए। असल बात है कि इंसान ये देखे कि मैं किसके रास्ते में निकला हूँ, और फिर आप देखिए कि उस वक़्त उसने क्या कहा। उसने कहा काश मेरी कौम को ये मालूम होता मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़रत फरमा दी। ये होती खैर ख्वाही, कोई और रूह होती तो कहती कि हाँ हाँ दिखाओ अल्लाह, इनको मज़ा तो आए, ज़रा देखो मेरा कितना अच्छा अंजाम हुआ, और इनको ज़रा इनका भी दिखा दो जहन्नुम का। नहीं, क्या चाह रहा है, तड़प क्या है, काश मेरी कौम जानती, या लैता कौमी यालमून। ज़रा इस जुमले पर गौर तो करें, अपने ऊपर लें, या लैता कौमी यालमून, ए काश मेरी कौम इल्म हासिल करती, ए काश मेरा ख़ानदान इल्म हासिल करता, ए काश मेरे रिश्तेदार इल्म हासिल करते। कि अंदर दिल की हर धड़कन के साथ ये समझ आता, क्या ये तड़प है, और अगर तड़प है तो सच बताए फिर उसकी कोशिश क्या है। हम तो दुनिया के नफ़े देने के लिए हरीस होते हैं, हम तो अपने प्यारों को तकलीफ़ों से बचाने के लिए तड़प रहे होते हैं। क्या हम वाकई गलत काम करते देख कर लोगों को हम रोकते हैं? नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इनको अल्लाह ये बता दे कि वजालनी मिनल मुखरमीन, अल्लाह ने मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। ये क्यों बताओ, ताकि मेरी इस कौम को ये पता तो चल जाए कि जो चीज़ मुझे अल्लाह की जन्नतों के काबिल कर गई तुम अभी भी उसको पा सकते हो। अल्लाह अकबर कबीर कबीरा। आप देखिए कि ये तड़प और ये तलब ही असल में रसूल माल है मुबल्लिग का। पीछे रजुलन मोमिन की बात थी, दावत की बात थी, यहाँ उस दावत का अल्टीमेट रिजल्ट है कि लोग बुरे अंजाम से बच जाएं। ठीक है, उस वक्त उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, ये सदा बस सहरा वाली बात है, सहरा में एक पुकार लगाने वाली बात है, कोई नहीं समझ रहा। लेकिन अब कितने लोग सूरत यासीन पढ़ते हैं, कितने ये वाक्या पढ़ते हैं, कितनों को इस शख्स का इखलास और इसकी ये बातें हिदायत की तरफ ले आती हैं। तो याद रखिए, ज़िंदगी में आपको कोई अच्छा रिस्पांस ना भी दे, बाद में अल्लाह ताला आपके लिए ये सब कुछ देगा। और ये फितरत की पुकार है कि एक इंसान अपने रब को पूजे, और जब अपने अकीदे का इजहार किया, इकरार किया, फिर उस पर जम गए, इसी का नाम तो है इस्तकामत फिद दीन। जुर्रत पैदा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के दिल में ईमान होता है लेकिन उसके इजहार से डरते हैं। फिर दूसरी बात है कि पहले मुबल्लिग था, तबलीग की, और जो वो बेहतरीन अमल है, वमन अहसन कौला मिम्मन दाअ इलल्लाह, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन गया, और फिर शहीद फी सबीलिल्लाह बनकर जन्नत में चला गया। यही है असल में करने का काम। सबसे पहले आपके अपने दिल खुलें, फिर आप दूसरों की तड़प रखें, खैर ख्वाही फूटे, और उसके बाद फिर अल्लाह आगे से आगे ले जाए। लोगों ने तो जान ली, अल्लाह ने हाथों हाथ लिया। असल बात यह है कि अल्लाह हमें इखलाक और खैर ख्वाही का मजमुआ बना दे। हम जब कुंद छुरियों के साथ तबलीग करते हैं और लोगों को ताने दे देकर उनके दिल तोड़ देते हैं तो बात नहीं बनती। अब वो लोग तो बेचारे उनको मारकर समझे कि बहुत कामयाब हो गए, लेकिन देखिए पीछे उनका अंजाम क्या हुआ। वमान जलना ला कौमी ही मिम्बा दी मिन जुंद मिनस्समा, इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत भी ना थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो खैर के खजाने भेजने थे भेज दिए। तड़पने वाला, पुकारने वाला, ख्वाहिश रखने वाला जो था वो जब दुनिया से गया, इसके बाद इनके पास सिर्फ एक धमाके की आवाज आई और वो खामेदोन बुझ कर रह गए। आग के बुझने को खमूद कहते हैं। और ये देखिए कि यहां ये बात करके अल्लाह ताला ने इस बात की भी गवाही दे दी कि असल में हर चीज का एक वक्त होता है। जिस वक्त इंसान उस चीज का फायदा ले लेता है, अल्लाह ताला उसको जावेदा कर देता है। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है, अल्लाह की मुखालफत में उठने वाली आवाजों को अल्लाह यूं दबा देता है, सिर्फ एक धमाका सब बुझकर रह गए। कभी भी इस्लाम और कुरान और रसूल के खिलाफ किसी की आवाज सुनकर घबराया ना करें। वो जात है ऊपर, वो जानती है, उसको दिफा करना आता है, उसको पता है मैंने कब किसको किस तरह करना है। अल्लाह जब किसी को पकड़ना चाहता है तो सिर्फ आवाज से मार देता है। अब ये मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इसको बढ़ाएं बढ़ाएं, एकदम ये माइक जो है ये आवाज दे, चिर चिर करे और एकदम चीखों में बदल जाए, कितने अपने कानों पे उंगलियां रख लेंगे। अल्लाह को क्या लगे, किसी को आग से मरवा दिया, किसी को पानी से मरवा दिया, सिर्फ सही हा सही का लफ्ज है, चीख को कहते हैं। तो जब लोग तोहयानियों में भरते हैं ना और इस्लाम और अल्लाह के कानून के खिलाफ आवाज लगाते हैं, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि तुम अपनी फिक्र करो। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात करके फरमाया, या हसरत अली बात, हाय अफसोस बंदों के हाल पर। मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़ियून, जो भी रसूल इनके पास आया इसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके और इसके बाद वो फिर कभी इनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सब को एक रोज जरूर हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अफसोस को महसूस कीजिए। और उस शख्स ने, हबीब ने जरा सी देर की कुर्बानी दी, क्यामत तक के लिए मा कद्दमू व आसारहुम की सूरत में निशानी बन के चिस्मा हो गई। आपके मेरे पास बहुत वक्त नहीं होता किसी जगह अपनी नेकी की मोहर सब्त करने का, बस एक इंस्टेंटली नेकी होती है, कर दें तो हो जाती है, ना करें तो फिर उसका सबक, उसका मौका ख़त्म हो जाता है। तो खुलासा क्या है यहाँ तक इस बात का कि खैरख्वाही पैदा करें। खैर ख्वाही कहाँ से पैदा होती है, तौहीद से, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का मुकाम। खुद को गुलाम समझें, गुलाम खुद को आका समझने लगे तो क्या होगा, फिर वो कभी भी रब की बात नहीं बनेगा। बंदे बनकर मांगते रहिए, अल्लाह आपके लिए सारे रास्ते आसान कर देगा। और दूसरी बात ये पता चली कि लिए दिए नहीं रहो, दूसरों के लिए तड़पो, दूसरों के लिए जियो। जब गुलामी करनी ही है तो अल्लाह की क्यों ना कर लें, उससे अच्छा आका में कौन मिलेगा। लेकिन ये गुलामी आसान कब होती है, जब दिल शुक्र के जज्बों से भरे होते हैं, दिल में शुक्र आ जाता है, अल्लाह का बंदा बनना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। अब जो बात कहनी थी ना सूरह यासीन में कह दी है, असल यही पैगाम है इसका। आगे सारी सूरत में निशानियां है कि अल्लाह की इबादत क्यों करूं। वमा अली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी, हमारे कल्चर में सूरह यासीन बहुत पढ़ी जाती है। कुरान पाक खोलें लोगों के घरों से लेकर, तो उसमें ये सफ़े कसरत इस्तेमाल की वजह से थोड़े से मुतासिर हुए होते हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर इस पर गौर करके तो देखें, एक एक लफ्ज़ आप जो पढ़ेंगे ना, ये निशानियों का है। कहीं कायनात की निशानियाँ, कहीं तारीख की निशानियाँ, कहीं लोगों की तरफ अल्लाह ताला के जो पैगाम लेकर गए थे रसूल, उनकी बात की निशानियाँ। कायनात की निशानियों में से पहली चीज़ फरमाया, इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है, हमने इसको जिंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं, हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि इसके फल खाएं, ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं। लेकिन बात क्या है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते। अफला यशकुरून, चाट बनाते हैं कभी, फ्रूट चाट किसने नहीं खाई? कभी उसके खूबसूरत रंगों को देखकर आपने मैंने इन आयतों पर गौर किया? आप सोचिए, अनार सुर्ख की बजाय ग्रे कलर का होता, क्या वो दाने मुंह में डालते? अंगूर हल्के अंगूरी रंग की बजाय कोई बहुत ही मटियाले रंग का होता, मुंह में डालते? फिर इतनी वैरायटी और सारे ही फल एक रंग के होते, ये किसने बनाया और किसके लिए बनाया? वैरायटी, खूबसूरती, एक खट्टा, एक मीठा, एक थोड़ा सा मीठा, एक ज्यादा मीठा, एक नमकीन, ताकि सबको मिलाकर जब खाओ तो तुम्हें टेस्ट आए। यही कायनात का असूल है। अल्लाह ने जैसे फलों के मुख्तलिफ जायके टेस्ट बनाए ना, इसी तरह इंसानों के भी बनाए हैं। असल बात है कि जब सब मिल जाते हैं, जब सारे अपनी कोशिशों को एक बर्तन में डालने लगते हैं, तो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मुरब्बा तैयार होता है, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत भी आती है। फिर दूसरी बात है कि ये चश्मों की बात है, और सब कुछ कहकर कहा तुमने किया है, ये तुमने बनाया है। सच बताइए, आज अपने घर में जब खाना बनाएं, इस आयत पे गौर कीजिएगा। एक छोटी सी चीज ना हम परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं पक सकता, फला चीज नहीं है। आप सोचिए, अगर वो होती ही ना, और किसने ये सोचा था कि ये सारा कॉम्बिनेशन जमा करेंगे तो हमारा सालन तैयार होगा? प्याज, लहसुन, अदरक, जो कुछ भी हमारे खानों में डलता है, आप देखिए ये किसने बनाया? आप कभी इमेजिन तो कीजिए, सब कड़वा होता, सब मीठा होता, सब खट्टा होता, क्या बनता? लेकिन असल बात है फला यशकुरून, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की नबातात में से हों या खुद इनकी अपनी जिन्स, यानी नौ इंसानी में से या इन अशिया में से जिनको ये जानते नहीं। एक और निशानी जो हर रोज देखते हैं और उससे गुजरते भी हैं, लेकिन बात यह है कि गौर कम करते हैं, और वो क्या है? वायतुलहुमुल्लैल, इनके लिए एक और निशानी रात है। हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। हरकत में बरकत है, हर चीज असल में इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है। ये जबरदस्त तलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद, उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ वो खजूर की सूखी शाख के मानित हो जाता है। ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जाती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आज ये बातें हम पढ़ते हैं कुरान में, जिन लोगों ने इन चीज़ों को साइंटिफिकली डिस्कवर किया था वो हैरान हो जाते हैं कि 1400 साल से पहले से ये आयात मौजूद है। कुरान को डिस्कवर जितना लोगों ने किया, सूरह यासीन की आयात को देखकर किया। आप देखिए कि हर चीज़ हरकत में, ये आज साइंस बताती है, अल्लाह ने हर चीज़ पहले से खोल के बता दी। दूसरी बात है कि हर चीज़ घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, ज़मीन भी घूम रही है, आसमान भी घूम रहा है। अगर मैं आपको इनके फिगर्स लिखाऊँ तो आप हैरान हो जाए, अकल गुम हो जाती है इंसान की, कितनी तेजी से घूम रहे हैं। यानी सूरज एक मिनट में शायद 150 मील तय करता है, एक मिनट में। आप और मैं 150 मील तय करें तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे। कोई आवाज़ आ रही है, कोई धमाके हो रहे हैं, झनझनाटे हो रहे हैं, यानी आप देखें तो इस पूरी कायनात में हर वक्त काम हो रहा है। दुनिया में आप किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में जाइए, आवाज़ें आ रही हैं, छक 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 छक, कहीं चक्की चल रही, कहीं बॉयलर फट रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। आप किसी मैकेनिक शॉप के पास, ठक 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 ठक, गाड़ियों की मरम्मत है। कहीं भी जाके देखिए, काम होता है तो शोर होता है, कायनात में शोर नहीं है। असल ये पैगाम है इस हिस्से का, खामोशी से काम करो, बोलो नहीं, शोर नहीं मचाओ, अपनी तारीफें ना करो, मैं ना करो, अपनी शोहरत के इश्तेहार ना दो, इतना किया, इतनों को फायदा हुआ, इतने आ रहे हैं, इतने जा, बस चुपके से काम करो। फिर मिसाल देती हूँ कि आप किसी कमरे में जाएं, इसी रूम में आए तो अंदर खूब आवाज़ें आ रही हों, शोर गुल, जी चा किलो काल, आप सोचेंगे अंदर कोई पार्टी हो रही है, और आप अंदर आए स्टोर से और पिन ड्रॉप साइलेंट, और हर बंदा सर डाल के बस कुछ लिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ काम हो रहा है। जब हमारे बच्चे काम में मसरूफ होते हैं, वो शोर नहीं करते। ये शोर कब करते हैं हमारे पीछे, कब जब फिरते हैं, जब इनको काम नहीं देते। तो जो काम कर रहे होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं बोलते। और बड़ों ने बड़ी इस पते की बात कही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जिनको बरसना है वो खामोशी से बरस जाते हैं। कभी कभी तो बड़ी शोर वाली बारिश होती है ना, लेकिन यहाँ आके मैंने इस चीज़ को इंजॉय किया, क्योंकि पाकिस्तान में इसी तरह से बारिश होती है, बैठे तो एकदम छन छन शुरू। नॉर्वे में बहुत बारिश होती, लेकिन बारिश में खड़े हों तो नहीं पता चलता, जब तक भीगे ना, आवाज़ नहीं होती। किसी किस्म की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, होती होगी तो होती हो, कभी गरज की आवाज नहीं सुनी, कभी चमक की नहीं। वही रब नॉर्वे में बारिश भेजता है, वही इधर भेजता है, वही पाकिस्तान में भेजता है। पाकिस्तान में हमेशा देखते थे कि बारिश होने से पहले आंधी चलती थी, गर्मियों में खास तौर पे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, और जूं ही खूब आंधी पर चली तो एकदम बारिश हुई तो मिट्टी बैठ जाती थी। मैंने ये मंजर दुनिया में आज तक तो कहीं नहीं देखा। क्यों? ये एक रब है, वो आपको मुझे सिखा रहा है कि काम करने का तरीका सीखो, किसी जगह किस इलाके में किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी से कहाँ बात करनी, किस किस्म के लोगों के साथ कोई बड़केदार बातें करनी है, किस में जोश वाली तकरीरें करनी है, किस में स्मूथ बात करनी है, किस में पेनिट्रेटिंग बात करनी है। ये असल में ये वो हबीब की वो तबलीग पे ही थीम चल रहा है, हिदायत की तलब, हिदायत देना चाहते हो हिदायत, हिदायत तो फिर उसके लिए तरीके भी सीखो। और ये भी सिखाता है कि हमारा भी कोई एक माहवर होना चाहिए। हम तो कभी जाके हज और उमरे की सूरत में तवाफ करते हैं, और उस चक्कर में क्या कहते हैं हम, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की, तीसरे, वो दुआओं के चक्करों में खो जाते हैं कितने बड़े थे। हालांकि नहीं, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज और उम्रे से ये सीख के आने की जरूरत है कि अल्लाह को अपना मरकज और महवर बनाओ। वमा ली अला अबुदुल्लजी, इसी जुमले को पूरे पारे में पढ़ लें, वमा ली अला अबुदुल्लजी, मैं क्यों ना करूं उसकी इबादत जब उसने मुझे पैदा किया, जब उसने मुझे सब कुछ दिया, और जो मेरी जिंदगी के अंधेरों को रोशनियों में बदलता है। इसमें एक और निशानी है, क्योंकि निशानियों पर गौर ही तो करना है आपने, मैंने, और तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है समझने वाली। ये सूरत गौर व फिक्र वाली सूरत है, तदब्बुर वाली सूरत है। तो आप देखिए किससे एक और सबक की बात है कि जब हर रात के बाद सुबह आती है तो मेरे गमों के बाद भी खुशी आएगी, मेरी बीमारियों के बाद सेहत आएगी, मेरी बेचैनियों को भी अल्लाह चैन में बदल देगा। और आप देखिए कि कायनात में ये जो एक छोटा सा सेल है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ा बनता है, इससे अल्लाह के एक होने की भी बात है। आगे हम पढ़ेंगे कि हर चीज इस कायनात में जोड़ों की शक्ल में है, सिर्फ एक हस्ती अकेली, और वो अल्लाह की है। अल्लाह ताला हमें उसी के साथ जोड़ दे। क्या चीज है जो आपको मुझे एक अल्लाह का बनाती है? इखलास। वमा ली अला अबुदुल्लज़ी, मुखलिस कौन है? जरा साहब देखें, खालिद, और किसी से नहीं मांगना। बस आप देखिए, शौहर पैसा दे ना दे, फिर मांगते उसी से ही है। कोई कहता है किसी और से मांग लो, हम कहते क्यों मांगो, क्यों बेइज्जती करो, शादी से पहले माँ बाप से मांगते। इखलास क्या है कि आपकी नजर किसी तरफ उठे ही ना, मिलना है तो इधर से मिलना है, थोड़ा मिलना है तो मिलना है, ज्यादा मिलना है तो मिलना है। इससे आप देखेंगे कि एक हैरत अंगेज किस्म की आपकी जिंदगी में और आपकी तबीयत में तब्दीली आएगी।